फिर आगे अल्लादी, देखिए पहले आया अल्लादी खलाकाकुम, अब अल्लादी दोबारा आया, इसका मतलब और भी कुछ चीजें अब याद दिलाई गई। कोई दुनिया का बंदा एक तो ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी ने पैदा ही नहीं किया, मैं खुद ही पैदा हो गया, या फलां बंदे ने मुझे पैदा कर दिया। तो पहला एहसान ये याद दिलाया कि देखो जिसने तुमको पैदा किया। अब दूसरा एहसान अल्लाह ताला का क्या है, अल्लज़ी जाला लकुमुल अर्ध फिराशा, जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछोना बना दिया, व समाअ बिना, और आसमान को छत बना दिया। यानी तुम अपने नीचे और ऊपर देखो, चाहे कोई फकीर है, चाहे कोई अमीर है, बादशाह है या कोई गुलाम है, या कोई औरत है या मर्द है, बच्चा है या बूढ़ा, जो भी है, अनपढ़ा जाहिल है या बड़ा इल्म वाला, हर कोई इस बात को समझ सकता है। ये कोई ऐसी साइंस नहीं है जो समझ ना है कि देखें जमीन की तरफ, देखें ठहरा हुआ बिछाया हुआ, किसने बनाया इसको हमारे लिए, ये घूम भी रही है और फिर ठहरी भी है। कि फिराशा हुआ ना बिछोना, अब बिछोने के ऊपर आप आराम से बैठ जाते हैं, ठीक है, आप आराम से बैठ जाते हैं, आपको कोई वो ऐसा होता है कि आपके लिए कंफर्ट देता है आपको। अब जमीन भी ऐसी है ना, इतनी नरम है कि आपके दलदल की तरह आपके पैर ही अंदर धंसते चले जाए, ना इतनी सख्त है कि आप उसमें कोई चीज उगा ही ना सके। आप खोदते हैं अंदर से पानी निकाल लेते हैं, आप खोदते हैं अंदर बीज डाल देते हैं। इसी तरह ऐसा भी नहीं है कि आप उसके ऊपर कदम रखें और आपका कदम जैसे चांद के ऊपर, वो दिखाते हैं कि किस तरह वो कदम रखते हैं, उड़ उड़ के जा रहे होते हैं। इतनी ग्रेविटी अल्लाह ताला ने रखी कि ना तो कदम उठाना इतना मुश्किल हो जाए कि कदम उठे ही ना। देखिए अगर ग्रेविटी ज्यादा होती ना तो हम ये कशिश से सकल कहते हैं उर्दू में, ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती कि अगर हम पैर उठाते और वो पैर हमारा उठता ना, या मुश्किल से उठता, हमारा चलना कितना मुश्किल होता, और दौड़ना तो और भी मुश्किल होता, हम काम काज कैसे करते। फिर अगर कम होती ग्रेविटी तो हम कदम उठाते और उड़ते हुए ऊपर चले जाते। इतनी परफेक्ट रखी कि कितने सहूलत से हम इस पे चल रहे हैं। फिर हम रात को भी सोते हैं तो ऐसे नहीं कि बज रही है, गरज रही है, या कहीं से फट रही है, या इतनी स्पीड है इसकी कि जो हमें महसूस हो रही है कि हम सो ही ना सके, या काम काज ना कर सके, या घर बना रहे हैं यहाँ पे, या और चीजें कर रहे हैं, कितनी आसानी से सहूलत से हम इस पे रहे और बस रहे हैं। और आसमान को बिना बनाया छत बनाया। अब चार चीजें आप देखेंगे यहां पर, किस तरह अल्लाह ताला ने इन चीजों को नेमत बताया कि देखो तुम्हारे लिए नेमत आसमान कितनी बड़ी प्रोटेक्शन है। इंसान जो जब आसमान की प्रोटेक्शन के अंडर रहता है तो फिर वो बाहर से जितनी भी, यानी आपको पता है कितने सारे मीटियोर्स हमारी जमीन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो बीच में ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक लेयर, जिसको आप ओजोन लेयर भी कहते हैं, आप कहते हैं ओजोन लेयर के अंदर एक होल हो गया और ऐसे हो गया, तो अल्लाह ताला ने ये छत बनाई हमारे ऊपर कि जो हमें सेफ रखती, इवन जो सूरज की खतरनाक शुआएं हैं वो भी नहीं हमारे तक उस तरह से डायरेक्ट पहुंचती। तो अल्लाह ताला ने इसको हमारे लिए बहुत बड़ा एक एक समझ लें जैसे एक हिफाजती हमारे इर्द गिर्द एक सर्कल बना दिया, जो कि हमारे लिए छत का काम देता है जमीन के इर्द गिर्द, जिसके जरिए इंसान यहाँ पर हिफाजत से बड़े महफूज तरीके से जिंदगी गुजार सकता है। अगर जितनी अब साइंस ने बताया, जितना कुछ इस कायनात में है, अगर कोई एक बड़ा पत्थर भी, कितने सारी चीजें हैं जो इस खला के अंदर, इस स्पेस के अंदर घूम रही हैं। आप देखते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर, रॉक्स भी हैं, दूसरे प्लैनेट्स भी हैं, कई सितारे हैं, कहीं कोई चीज भी आके जमीन पे गिर जाती, जैसे एक दफा आइस एज आ गई थी, अल्लाह ताला ने सब चीजों को खत्म कर दिया था, उसके इज़न से हुआ था, डायनासोर्स भी खत्म हो गए, आपको सब पता है। तो वो कहने का मकसद ये कि अगर अल्लाह ताला ऐसे हिफाजत ना फरमाता तो हम यहाँ पे आराम से रह ही नहीं सकते थे, कोई ना कोई चीज यहाँ पे रोज गिरी होती और सूरज की शुआएं हमारे तक आनी बंद हो जाती, लाइफ तो खत्म हो जाती यहाँ से। तो अल्लाह ताला ने आसमान को छत बनाया, वह अनजला मिनस्समाए माअन, और उतारा उसने आसमान से पानी को। देखो ये बारिश भी इंसान की अपनी कुदरत नहीं, इसके अपने बस में नहीं कहीं बारिश करते, ये अल्लाह ताला ही आसमान से बारिश नाजिल करता है। फअखरज बिही मिनस समरात रिज़्क़न लकुम, जहाँ पे बारिश के बहुत सारे और फवायद हैं, वहां पे ये कितना बड़ा फायदा है कि तुम्हारे लिए रिस्क का बंदोबस्त इसी जमीन पे कर दिया और फल तुम्हारे लिए निकाले। समरा से अगर हम सिर्फ फल लें तो आप देखें कि अल्लाह ताला ने सिर्फ जरूरियातें जिंदगी नहीं दी, फल जो है वो एक लग्जरी है अगर आपको मिल जाए। देखें, आपको आपकी नीड नहीं है, आपके लिए एक एडेड एक चीज है जो कि आपके लिए मजा देने के लिए, लज्जत का सामान है, तो अल्लाह ताला ने उसका भी इंतजाम फरमा दिया। इमेजिन करें कि अगर इस जमीन के ऊपर कोई चीज ना उगती और आपको चांद से या मार्स से लानी पड़ती तो क्या हाल होता। यहीं से अल्लाह ताला ने रिस्क का बंदोबस्त भी तुम्हारे लिए कर दिया आसमान से बारिश निकाल के। तो चार चीजों का यहाँ जिक्र और एक चीज का पहले जिक्र कि अल्लाह ताला ने तुम्हें भी पैदा फरमाया, और फिर उसके बाद दूसरी चीज का जिक्र कि तुम्हारे आबाओ अजदाद को भी पैदा फरमाया, और उसके बाद फिर ये चार नेमतें अल्लाह ताला ने गिनवाई। क्योंकि खाना पीना रहना सहना, रहोगे तभी जब आपकी जमीन कुछ सही होगी और आसमान की भी कुछ कोई हिफाजत होगी, तो फिर ही आप यहाँ पे सिक्योरली रह सकते हो, वरना तो आप रह ही नहीं सकते। तो सबसे पहली इंसान की जरूरत जो रोटी कपड़ा मकान है, तो वो अल्लाह ताला ने इसी जमीन के अंदर से पूरा कर दिया। तो अब तुम्हारा क्या काम है? फला तजालू लिल्लाही अंदादा, तो ना तुम बनाओ अल्लाह ताला के साथ कोई निद। अब निद बनाने का अल्लाह ताला ने उससे मना फरमाया कि अल्लाह ताला के साथ कोई निद ना बनाओ, यानी कोई उसके पार्टनर्स, कोई उसके मद्दे मुकाबिल जो बराबर हो, जो किसी के यानी जिद को कहते हैं उसका उलट। तो अल्लाह ताला के साथ निद ना बनाओ, यानी अल्लाह ताला का मद्दे मुकाबिल ना कोई किसी को खड़ा कर दो, उसका पार्टनर ना बना दो, उसके जैसा ना किसी को बना दो। इबादत करने में खालिस अल्लाह ताला की इबादत करो। अरे जिस वक्त इंसान अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक बना देता है, तो असल में वो इबादत पूरी अल्लाह ताला के लिए नहीं रहती। जो हम कहते हैं इय्याका नाबुदु, तो वो फिर इय्याका नाबुदु नहीं रहता। अगर किसी को भी साथ शरीक ठहरा दिया, मैंने जैसे आपको बताया कि अब्दियत जो है ना वो 24/7 की है, उसमें कोई छुट्टी नहीं है कि अब 6 दिन तो अल्लाह की इबादत कर दी, 1 दिन किसी और की भी कर ले, ये नहीं है। फिर या फिर हम परेशानी में तो अल्लाह अल्लाह करें, और जब खुशी का मौका आया तो अब अपनी गुलामी शुरू कर दी, अपने आप को निद बना लिया, अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्ला पार्टनर बना लिया, कि अपने आप को समझ लिया कि मेरी भी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। ख्वाहिशात को भी तो इंसान शरीक ठहरा लेता है, ये भी एक शिर्क है। जब इंसान किसी और की, तो मैं गुलामी करता नहीं हूं, जब जो कहता ना मैं किसी की गुलामी नहीं करता, वो असल में अपने आप की गुलामी कर रहा होता है। क्योंकि इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने ये चीज रखती है कि वो किसी ना किसी का गुलाम तो जरूर होगा, किसी का बनेगा गुलाम। इसी वजह से जब कोई अल्लाह के गुलाम नहीं बनते ना, तो फिर वो कहना शुरू हो जाते हैं मैं अपने महबूब की पूजा करता हूँ। हमने कई शायरी में देखा होगा उसकी, तेरी पूजा करता हूँ, और ऐसे, क्योंकि उसने उसी को खुदा बना लिया, और बल्कि मुंह से बोलते भी हैं तू ये मेरा खुदा है, इस तरह के भी कोई शायरी के अंदर है। क्योंकि उसने जब अल्लाह ताला की इबादत छोड़ी ना, तो अंदर एक अर्ज, एक ये नीड है इंसान की, जैसे खाना पीना एक नीड है, इस तरह इसकी एक नीड है कि मैं किसी की गुलामी करूं। अल्लाह ताला ने इसके अंदर ये मादा रख दिया। अब वो जब सही रास्ते पे नहीं होता, तो फिर कहीं ना कहीं तो जाके उसने गुलामी करनी, फिर वो जाके कहीं ख्वाहिश का गुलाम बन जाएगा, कहीं किसी इंसान का गुलाम बन जाएगा, कहीं किसी कुरान का गुलाम बन जाएगा, कहीं किसी सिस्टम का गुलाम बन जाएगा, किसी का भी बनेगा, बनेगा जरूर, किसी के आगे जो जरूर झुकेगा, उसकी इबादत शुरू कर देगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला की इबादत के अलावा किसी और की इबादत करना, ये नहीं, क्योंकि वो होता है कुफर। एक होता है निद शरीक, कि अल्लाह ताला की भी इबादत कर रहा है लेकिन उसका हिस्सेदार बना दिया किसी को। किसी और को भी शामिल कर दिया, उसकी जात में या उसकी सिफात में किसी को शामिल कर दिया। जात में शामिल करना कैसे होता है? जैसे जात में लोग आज ईसा अलैहि सलाम को भी पूज रहे हैं, जात में शरीक कर दिया, निद बना दिया। और सिफात में कैसे होता है कि जाके किसी और को भी समझ लिया कि रिस्क अल्लाह तो देता है, लेकिन रिस्क ये कब्र वाले भी देते हैं। अच्छा, औलाद अल्लाह ताला तो देता है, नऊजु बिल्ला औलाद फलां पीर साहब भी देते हैं, या अल्लाह के नाम की नजर नियाज तो करनी है और फलां के नाम की नजर नियाज भी करती है। अल्लाह ताला के नाम पे तो जिबा करते हैं बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर कह के, मगर किसी गैर अल्लाह के नाम की भी जबीहा कर दिया। तो ये सारे नित बनाना है कि इंसान अल्लाह ताला की ये जो चीजें, जो ये भी इबादत में शामिल है ना, दुआ इबादत में शामिल है, सजदा इबादत में शामिल है, यानी आप इबादत के कंपोनेंट्स हैं समझ लें। नजर नियाज हो गई, वो सिर्फ अल्लाह के लिए है, क्योंकि ये नजर नियाज इबादत का हिस्सा है। दुआ सिर्फ अल्लाह के से की जा सकती है, क्योंकि दुआ भी इबादत का हिस्सा है। सजदा सिर्फ अल्लाह ताला के लिए किया जा सकता है, क्योंकि सजदा भी इबादत का हिस्सा है। जब आप कहते हैं ना इय्याक नाबुदु, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, तो भी ये चाहे सजदा है, चाहे दुआएं करनी है, चाहे नजरों नियाज करनी है, ये सारी, चाहे नमाज है, ये सारी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हो सकती। किसी और की ताजीम में उसके आगे झुक जाना, या किसी और के आगे हाथ उठा के खड़े हो जाना कि तू मुझे अता कर, या किसी और को समझना अपने नफा नुकसान का मालिक है, ये भी मेरी मुझे जिंदगी दे सकता है, मौत दे सकता है, ये सब शिर्क हो गए। तो यानी ये सिफात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हैं, और उन अल्लाह ताला की तमाम सिफात में देख लें कहीं कोई शिर्क तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक चीज है जो अल्लाह ताला ने कभी माफ नहीं करनी अगर कोई इसके साथ मर गया तो। जो इसके साथ मर गया ना, अल्लाह ताला इसको कभी माफ नहीं करेगा। इस सूरह निसा में हम पढ़ेंगे, दो दफा इसी बात को रिपीट किया गया, अल्लाह ताला जिस गुनाह को चाहे माफ कर दे। इंसान 1000 गुनाह करके चला गया ना अगर दुनिया से, ये शिर्क नहीं उसने किया, तो अल्लाह ताला चाहे तो किसी गुनाह को माफ कर दे वैसे ही अपनी रहमत से, चाहे तो सजा दे के फिर उसको साफ, पाक साफ कर दे। लेकिन ये जो शिर्क है ना, ये ऐसा गुनाह है, ये साफ हो ही नहीं सकता, ना सजा से साफ होगा कि जहन्नुम में पड़े ना तो जी शिर्क साफ हो गया, अब एक दिन जन्नत में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, जो शिर्क से बचा हुआ अल्लाह की सिर्फ इबादत करता था, उसने 100 गुना भी किए हों, 1000 गुना भी किए हों, फिर एक ना एक दिन वो जन्नत में जरूर चला जाएगा। लेकिन जिसने शिर्क कर लिया, जो सबसे बड़ा गुनाह है, इसकी सफाई नहीं हो सकती। इसकी सफाई अगर करनी है ना, तो इस दुनिया में हो सकती है, यहीं पे इंसान माफी मांग ले अल्लाह ताला से, यहीं पे तौबा कर ले, और अल्लाह ताला की कितनी रहमत है कि अगर यहां पे कर लेगा ना तो अल्लाह ताला माफ कर देगा, यहां पे अगर पलटना चाहेगा तो अल्लाह ताला माफ कर देगा। इसलिए किसी चीज में शिर्क का शुबा भी अगर आपको हो जाए ना, उससे भी दूर रहे। किसी को अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं ठहराना। हम कहते हैं हम बुतों के आगे तो नहीं झुकते, उनकी तो बंदगी नहीं करते। हम ये भी कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं। देखिए, अल्लाह ताला को ना मानना तो कुफर ही हो गया ना। यहाँ पे कुफर की बात है, यहाँ पे निद बनाने की बात है, शरीक करना, वो शिर्क जो है ना, कुफर का पता चल जाता है, शिर्क का असल में पता नहीं चलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिर्क इतना दबीब चाल के साथ आता है ना, जैसे काली चूंटी काली रात में काले पत्थर पे चलती है, इस तरह शिर्क खफी होता है। नजर आती है कोई वो काली चूंटी? नहीं नजर आती ना, शिर्क अंदर ऐसे क्रीपिंग कर लेता है। इसी वजह से किसी को भी ऐसे नहीं करना कि ये समझना कि ये इसका हुक्म मानना अल्लाह के हुक्म से भी बढ़ के। कई औरतें आके सवाल करती, अल्लाह ताला का हुक्म कुछ और है, आके नहीं क्या करें हस्बैंड कह रहे हैं, फिर मान लें कि ना भाई, आप कैसे ये सवाल भी कैसे कर सकते हैं? आपको नहीं पता कि सबसे बड़ा हक आपके ऊपर किसका है? हस्बैंड ने पैदा किया आपको, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया ना उसका हक सबसे बड़ा है, जो तुम्हें खिला रहा है पिला रहा है, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बनाया, इस आसमान की छत को खड़ा किया, वो है जिसका हक तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा है। फिर तुम आके ये सवाल करने का भी, ये सोच भी कैसे आ सकती है कि हम ये सोचेंगे किसी और का, बाप की इताअत बड़ी है कि अल्लाह की बात। हाँ माँ बाप हैं तो सही, वो अल्लाह ताला ने ही हुक्म दिया है कि हाँ बाप की इताअत करो, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो किसी की इताअत नहीं है। अल्लाह ताला के नाफरमानी में किसी की इताअत नहीं, कि अल्लाह की नाफरमानी होती रहे तो हम इसकी इताअत करें। कई लोग औलाद के सामने झुक जाते हैं, क्या करें बच्चे नहीं मानते, बच्चे हमारे खुदा हैं क्या? अल्लाह ताला की इताअत के आगे किसी का हुक्म नहीं मानना, किसी का हुक्म आ भी जाए और वो कहीं अल्लाह की इताअत में के रास्ते में रुकावट बन जाए या अल्लाह के हुक्म से टकरा रहा हो तो उसकी नहीं माननी, चाहे वो कोई भी बंदा है, वो आपके पीर साहब है, चाहे वो आपके कोई भी है। अब एक आप थोड़ा सा समझने के लिए इब्ने कसीर ने इब्ने अब्बास के हवाले से मुख्तलिफ छोटी छोटी मिसालें दी हुई हैं शिरकी के, जैसे शिरक किस चीज चीज के अंदर होता है ऐसे। तो एक उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कि अगर कोई ये कहे मेरी बत्तख ना बोलती तो रात मेरे घर चोरी हो जाती, ये भी शिरकिया कलेमात हो गए। यानी जैसे हम कहें कि अगर मेरे घर में कुत्ता ना होता ना तो आज तो हमारे घर में चोरी हो ही गई थी, अगर फलाना आता तो आज तो मेरे बचना ही नहीं था, अगर डॉक्टर के ये डॉक्टर मेरा इलाज ना करता ना तो मैं तो बस मर गई थी। तो ये चीजें किसके हाथ में, नफा नुकसान किसके हाथ में, जिंदगी किसके हाथ में? आपने तो सोच लिया कि डॉक्टर के हाथ में जिंदगी, आपने सोच लिया अस्पताल के हाथ में जिंदगी है मेरी या फलां के। तो ये शिरकिया कलिमात हैं। अब हमारी इंटेंशन नहीं होती लेकिन मुंह से निकल अगर जाए, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखा दी हमें, क्योंकि हम अनइंटेंशनली भी, हमारा अकीदा नहीं है लेकिन अनइंटेंशनली हमारे मुंह से कभी कोई ऐसी बात ना निकल जाए, और निकल गई हो तब भी हम ये दुआ को लाजमी पकड़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ुबिका अन उशरिका बिका शैअन व अना आलमु व अस्तग़फिरुका लिमा ला आलमु। अल्लाह ताला मैं तेरी पनाह मांगती हूँ इस चीज से कि मैं शिर्क करूं उस चीज के साथ कि जो जिसका मुझे पता है, इससे भी मैं पनाह मांगती हूं कि मुझे बचा ले कि मैं जानती हूं और फिर मैं शिर्क कर लूं, और मैं माफी मांगती हूं कोई चीज मुझे नहीं पता और मैंने उसके साथ उस बात को कह दिया, वो शिर्क कर लिया मुझे नहीं पता था। अल्लाह ताला मैं उससे भी यानी दानिस्ता तौर पे जानबूझ के या अनजाने में किसी तरह भी मुझसे कोई शिर्क की बात ना हो जाए, मुझे बचा लेना कि मैं जानबूझ के करूं, और अगर अनजाने में हो तो मुझे माफ कर देना। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में इस कदर केयरफुल थे कि एक आदमी ने आके कहा जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे, माशा अल्लाह व माशिता, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें वैसे हो। तो आपने फरमाया क्या तू मुझे अल्लाह ताला का निद ठहराता है, सिर्फ ये कहे कि जो अल्लाह ताला चाहे इंशा अल्लाह सिर्फ बस। तो इसलिए उतनी ज्यादा केयरफुल होना चाहिए कि ये कहीं हमारे मुंह से ऐसी कोई बात ना निकले, मैं ये दवाई ना खाती तो मैं ना बचती, ये मैंने इस हकीम से इलाज कराया तो मुझे शिफा हुई, अल्लाह ने शिफा दे दी इस हकीम के हाथ में, अल्लाह ताला ने शिफा रख दी, ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसे ना कहें कि ये था तो इससे मुझे ये फायदा हुआ या ये नुकसान हो गया या इसकी वजह से मैं बच गई, अगर आज तुम ना आते तो मैं तो बस ये मेरा हो गया था, ऐसे हो गया था, ये हम कितनी दफा आम कह देते हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें भेज दिया, ये क्यों नहीं कहते हमें कोई कामयाबी मिल गई, मैंने बहुत मेहनत की थी या फलाने बड़ी मेहनत की थी, मेरे बच्चे ने मेहनत बहुत की थी इसलिए कामयाब हुआ, नहीं अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को कामयाबी दी है। अब फिर आप कह सकते हैं कि इसने मेहनत भी बहुत की थी तो अल्लाह ताला ने इसको कामयाबी दी, कामयाबी अल्लाह ने ही दी है, मेहनत तो ये कर सकता है ठीक है लेकिन मेहनत की वजह से कामयाबी नहीं मिल सकती, कामयाबी देने वाला तो अल्लाह ही है ठीक है। तो हमारे हर काम में निस्बत जो हम ठहराएं वो अल्लाह ताला की तरफ ठहराएं, तो ये बहुत समझने की बातें हैं जब हमें नहीं पता होता, क्योंकि हमने कभी इल्म लेने की तरफ तवज्जो नहीं दी होती, कभी सीखा नहीं होता अपने आप को बड़ा पक्का सच्चा मुसलमान समझते हैं, सब आता है हमें, सब पता है हमें, हर बात यही हम कहते रहते हैं। मैं देख लें कि कितनी छोटी छोटी बातें हैं, ये भी नहीं हमें पता होती, और अगर पता हो भी तो भूल जाती हैं, तो बार बार रिमाइंडर्स की जरूरत है। वह अंतुम तालमून, और तुम जानते हो, क्या जानते हो, तुम्हें पता है कि एक पैदा करने वाला अल्लाह है। आज जो दहरिये भी हैं ना, एथीस्ट भी हैं, वो साइंटिस्ट भी कहते हैं कि जब उन्होंने ये सारी कायनात को जो स्टडी किया, तो वो कहते हैं कोई जात है, अब वो तो क्योंकि अल्लाह ताला को तो मानते नहीं, कहते कोई जात है जो बियॉन्ड दिस टाइम फ्रेम है, कोई जिसने ये सब पैदा किया, जिसके ऊपर टाइम का असर नहीं है, वरना ये नहीं चल सकता, क्योंकि अकल हमारी अकल में भी नहीं आता इस कायनात का जो निजाम है। तो तुम जानते हो, और इवन मुशरिकीने मक्का भी ये कहते थे कि जब उनसे कहा जाता था कि किसने पैदा किया, तो इसीलिए उलमा कहते हैं ना कि जो मुशरिकीने मक्का थे वो आज के मुशरिक से तो बेहतर है, इसलिए कि आज का मुशरिक तो ये भी नहीं कहता, मगर वो ये कहते थे कि हाँ अल्लाह ने पैदा किया। जब उनसे पूछा जाता आसमान और जमीन किसने पैदा किए, तो वो कहते थे अल्लाह ने पैदा किए, वो यहां तक अल्लाह ताला को मानते थे। फिर आगे तो वो शिर्क करते थे ना, शरीक आगे ठहराते थे, उससे पहले नहीं, उससे पहले तो वो मान जाते थे कि हाँ अल्लाह ताला ने ही पैदा किया, और अल्लाह ताला ने इस चीज का जिक्र सूरह जुखरफ आयत नंबर 87 में भी किया कि अगर आप इनसे सवाल करें कि इनको किसने पैदा किया, तो ये जरूर कहेंगे अल्लाह ने, तो फिर कहाँ भटक रहे हैं। अगर तुम मानते हो कि अल्लाह ने पैदा किया, फिर क्यों किसी और को शरीक ठहराते हैं? इसका मतलब तुम मानते हो कि ये ताकत अल्लाह ताला के पास है। फिर सूरह अनकबूत में 61 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम इनसे सवाल पूछो कि किसने आसमानों और जमीन को पैदा किए और सूरज और चांद को किसने मुसख्खर किए, तो ये जरूर कहेंगे अल्लाह ने। आज का मुशरिक तो ये भी नहीं कहता। फअन्ना युफकून, फिर तुम किधर भटक रहे हो, क्यों नहीं समझ आती तुम्हें बात, वे मानते भी हो फिर भी शरीक ठहराते। तो फिर जिसके हाथ में तुम्हें पैदा करना है, आसमान और जमीन को पैदा करना, वो तुम्हें रिस्क नहीं दे सकता, फिर क्यों जाते हो उन बाबों के पास जाके कि वहां पे जाके हम सजदा करेंगे, इधर धागे बांधेंगे, इधर देख देंगे। वो देख देना, किसी गरीबों को खिलाना बुरा भी नहीं है, लेकिन उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, खुद सोचे, जो भी ये काम करते हैं इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है सिर्फ कि हम जाएं और जब वहां पे देख देंगे, तो ये जो जो भी हैं वो बुजुर्ग, वो अपनी जगह नेक होंगे, लेकिन उन बुजुर्ग की खुशनूदी हमें हासिल हो जाए, क्योंकि हमने उनकी दरगाह पे जाके देख दिया। वो जब उन वो खुश होंगे ना, वो अल्लाह के आगे हमारा सवाल रखेंगे, तो फिर अल्लाह ताला हमारी सुन लेगा। ये कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, यानी फिर तो जो आपके काम बनाने वाला है, असल तो आप उसी की पूजा करते हैं। फिर आपको ये लगता है ना, ये बुजुर्गी है जो मेरे से, इसीलिए अल्लाह ताला ने सारे वास्ते खत्म कर दिए, डायरेक्ट मुझसे मांगो, मेरे से मांगो, या का नस्ताइन में हम यही तो कहते हैं ना, अल्लाह ताला हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते, झूठ है ये। अगर आप कहते नमाज में ये हो और फिर आप जा जाके कहीं और मांगते, क्यों फिर उनसे मदद मांगते, आपने तो कहा था सिर्फ तुझसे हम मदद मांगते, दिन रात झूठ बोल रहे हो, इस देखे पता ही नहीं कि बोल क्या रहे हो, कुछ की गहराई में तो जाके सोचते, सारे शिर्क की जड़ कट जाती है अगर इया का नाबुद हुआ इया का नस्ताइन, सिर्फ ये अकीदा सही हो जाए। तो फिर जब कोई जाता है और जाके ऐसी दरगाह पे मांगता है, तो वो दरअसल यही कह रहा होता है कि मैं इनके आगे, अगर इसकी नहीं भी मैं इबादत करता फलां को, मैं हालांकि वो वहां पे सज्दे कर रहे होते हैं, उन्हीं की तरफ मुंह करके दुआएं, हाथ उठा के दुआएं मांग रहे होते हैं, अगर वो ये उसको खुदा नहीं भी समझता, तो कम से कम ये जरूर समझता है कि यही है जो मेरा नफा और नुकसान, नफा करने वाला और नुकसान से बचाने वाला, नफा नुकसान का मालिक ये है, क्योंकि यही कहेगा तो मुझे नफा मिल जाएगा, यही कहेगा तो मेरे मैं नुकसान से बच जाऊंगा, तो यही तो खुदा बनाना हुआ। क्योंकि ये उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह ताला के साथ होनी चाहिए कि मेरे नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं। और हम मुंह से कहते हैं, मुंह से हम सब कहते हैं और मानते हैं, अगर अल्लाह ताला मुझे नफा देना चाहे तो सारी दुनिया भी मिल जाए तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अगर वो मेरा नुकसान करना चाहे, सारी दुनिया भी मिल जाए तो मुझे नफा नहीं देना चाहती, ये हमारी जुबानों पर होता है, लेकिन ये कहाँ चला जाता है जिस बात हम किसी और को अपने नफा और नुकसान का मालिक समझ लेते हैं। हमने अल्लाह ताला की ये एक सिफत लेके तो किसी और को दे दी ना, किसी और को समझ लिया ना कि इसके हाथ में कोई पावर्स हैं। इवन हम जब ये सुपरस्टिशियस बातें करते हैं, काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब मेरा काम नहीं होना, मंगल वाले दिन काम ना करना, ये काम नहीं होना, बुध वाले दिन काम किया करो, बुध काम शुद्ध पता नहीं क्या, 13 तारीख को ना रखना, 13 तारीख मनहूस होती, इसका मतलब हमने सारी पावर्स इन चीजों में समझ ली है ना। पावर तो अल्लाह ताला के पास है, नफा और नुकसान की पावर क्या अल्लाह के पास नहीं है? 13 तारीख में है, वो काली बिल्ली के अंदर है, क्या ट्यूसडे के दिन में है, क्या वेंसडे के दिन में है? तो किधर किधर शिर्क हो रहा है सोचें, वाकई क्रीप इन नहीं कर रहा? कहीं इंसानों को हम नेत बना के बैठे हुए हैं, कहीं और ऐसी अल्लाह की मखलूक को बना के बैठे हुए हैं, कहीं दिनों को और कहीं किसी और चीज को। जब पावर्स हमने सारी बांट दी, हमने तो कहा था सिर्फ एक है जो अला कुल्ली शैइन कदीर है, जिसके पास सारी पावर है हर चीज की, हमने तो उसकी सारी पावर्स इधर उधर बांटी हुई, और कहते अपने आप को हैं कि इयाका नाबुद व इयाका नस्ताइन। तो ये बात हो गई तौहीद के ऊपर, आगे बात देखते हैं। वह इन कुन तुम फी रईबिन मिम्मा नज़लना, अगर तुम हो शक में इस के बारे में, शक में हो, नज़लना जो उतारा हमने, अला अब्दीना अपने बंदे पर, क्या उतारा अपने बंदे पर और किस बंदे पर, बंदे से मुराद यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और देखें आला रसूल नहीं फरमाया, आला रसूली ना नहीं फरमाया, अपने रसूल पर, हमारे रसूल पर जो हमने उतारा नहीं, अब्द इसका मतलब जो सबसे ऊंचा मकाम है किसी इंसान के लिए अल्लाह ताला के यहाँ, वो अब्द होना है। और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ भी, और आप सूरह इसरा में भी देखें जब अल्लाह ताला लेकर जा रहे हैं मेराज पे, तो उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द कह के पुकारा। अल्लाह ताला का अब्द होना इंसान की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। वो किसी शायर ने कहा था ना कि मेरी तरफ ना देखो, देखो कि मेरा वो रब कौन है जिसका अब्द मैं हूं। तो ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है, इसलिए इतना बड़ा ऑनर है कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अब्द फरमाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इनकार नहीं किया है। ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के अब्द हैं। तो इसलिए अल्लाह का बंदा बनना ये इंसान के लिए ऊंचा मकाम है, दुनिया में इंसानों के गुलाम बनना उसके लिए जिल्लत है, उसके लिए नीचे होना है, लेकिन जब अल्लाह ताला का गुलाम कोई बनता है तो ये उसके लिए ऊंचा मकाम, बुलंद मकाम है। तो अगर तुम हो शक में उसके बारे में जो उतारा हमने अपने बंदे पर, अब क्या उतारा अल्लाह ताला ने नबी अलैहि सलातो वसलाम पर, कुरान, तो अगर तुम्हें इसमें शक है, अब यहां पर कुरान की हक्कानियत के ऊपर बात है कि कुरान हक है, अल्लाह ताला का कलाम है, और इसके बारे में कभी तुम्हें ये शक ना हो कि अल्लाह ताला के कलाम में कोई, यानी शायद ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं हो, या इसमें शायद कोई चीज ऐड हो गई हो, या पता नहीं अल्लाह की तरफ से है या नहीं है, या कोई आपसे पूछता है, मसलन कोई गैर मुस्लिम है, वो आपसे पूछे कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये अल्लाह ताला का कलाम है, तो अगर तुम्हें शक है, उन सब के लिए ये जवाब है, और जवाब ही नहीं, इसमें एक चैलेंज भी है इस आयत में। ठीक है, अगर तुम इसके अंदर शक करते हो और तुम ये समझते हो जैसे कुफारे मक्का समझते थे कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही घड़ के ले आए हैं ये कुरान, और इन्होंने यहाँ किसी से सीख लिया तो बना के ले आए, तो फिर ऐसा करो, फातू भी सूरत मिमिथली ही, तुम भी एक सूरत बना के ले आओ इस जैसी, जैसा कुरान है ना वैसी तुम भी एक सूरत ले आओ। अब ये कुरान का चैलेंज सिर्फ यहां पर नहीं है, कुरान का चैलेंज यही सूरह बनी इसराइल में भी है, जिसमें भी है कि कुरान जैसा एक ले आओ, और सूरा हूद में, सूरा बनी इसराइल आयत 88 में, सूरा हूद आयत 13 में अल्लाह ताला ने तख़फीफ कर दी, एक सूरत ले आओ। फिर सूरा यूनस 38 में अल्लाह ताला ने फरमाया 10 सूरतें ले आओ। ये पहले सूर आशरी सूवर इन सूरा हूद में, और सूरह यूनस में एक सूरत ले आओ। अब एक सूरत भी नहीं ला सकते तो सूरत तूर में आयत 34 में एक जैसी इसकी जैसी यानी एक आयत भी ले आओ, एक बात भी ले आओ, भी हदीस इनका लफ्ज है। तो बनी इसराइल 88, हूद 13, यूनस 38 और तूर 34, इनके अंदर ये चैलेंजेस मौजूद है यानी ये और 4 दफा यानी यहां से मिला के 5 दफा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये चैलेंज दिया है कि इस जैसा ले आओ या इस 10 सूरतें ले आओ या एक सूरत ले आओ या एक आयत ही ले आओ जो इसके मुकाबले में हो। अब हम कहेंगे कि देखें लोगों ने तो कुरान बना के, कई कहते हैं यहूदियों ने बनाए हैं, वेबसाइट ऐसी बनाई है उसके अंदर लिखा हुआ ये कुरान है और वो देखे वो झूठ है झूठ है, सारे हर जगह ये फैलाया जाता है, देखो उसके उसमें ना आ जाना कि वो झूठ, उन्होंने झूठा कुरान। देखें जो मुसलमान है ना उसको तो दूसरे को बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि ये झूठ है, जिसने इस कुरान को पढ़ा होगा समझा होगा, ये बताना इतना ऐलान इसलिए करने की जरूरत थी, कभी आप अपने कुरान को पढ़ के तो देख लेते, समझ के देख लेते तो खुद ही पता चल जाता कि वो कुरान नहीं है, लेकिन कभी आंखें खोल के पढ़ा ही नहीं, तो अब इसलिए हमें ऐलान करने की जरूरत होती, वरना कोई ऐसा कलाम बना ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया वदउ शुहदाअकुम, और ले आओ अपने साथ अब गवाहों को भी यानी और लोगों को भी ले आओ जो इसमें तुम्हारे साथ मिल जाएं, जो तुम्हारे मददगार हों। गवाह जो होता है वो मददगार होता है ना, इंसान से खुद नहीं अपनी बात पूरी की जा रही होती तो वो अपने साथ गवाह लेकर आता है, तो अपने साथ मददगार भी ले आओ, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा जिसको मर्जी ले आओ, जिन्नों को ले आओ, फरिश्तों को ले आओ और इंसानों को ले आओ, बड़े बड़े शायरों को ले आओ, किसी को भी ले आओ, बड़े बड़े साइंटिस्ट जा सब मिल जाए, बड़े बड़े राइटर्स सारे तुम अपने ब्रेन्स ले आओ, क्योंकि कुरान के अंदर साइंसी मालूमात भी हैं, कुरान के अंदर फ्यूचर की बातें भी हैं, कुरान के अंदर पास्ट की बातें भी हैं, कुरान के अंदर हिकमत की बातें भी हैं, कुरान की लैंग्वेज भी इतनी जबरदस्त है कि उसका भी मुकाबला नहीं कोई कर सकता, जो इसमें रिदम है, स्वाति आहंग है, परफेक्ट लिंग्विस्टिकली भी परफेक्ट है वो भी है, और ऐसी हैरत अंगेज बातें जो आज साइंस डिस्कवर कर रही है वो उस वक्त बता दी गई, तो सारों की जरूरत पड़ेगी फिर तुम्हें, सारे ही को जमा कर लो, साइंसदान भी ले आओ, कोई काहिन भी ले आओ जो तुम्हें आगे नजूमी कोई आगे की बातें बता दे, कोई और इस तरह सारे मिल के ना तो कुछ एक बना लो, अगर तुम सच्चे हो इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो कि ये इस एक नबी का कॉल है इनकी बात है, तो फिर तुम सारे मिलके तुम भी फिर ले आओ, तुम्हारा एक ना सारे ही मिल जाओ, उन्होंने तो एक ने फिर ऐसा कलाम लेकर आए ना, तुम सारे मिल जाओ, वो जिनको तुम मानते हो कि ये उम्मी हैं, इन्होंने कभी किसी से तालीम नहीं हासिल की, वो अगर ये ले आए तो फिर तुम्हारे लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं होनी चाहिए, तुम तो सारे मिलके भी ले आओ, चलो तुम्हें ये भी सहूलत दे दी जाती है। और मुख्तसिर सी 2-3 आयतें भी सूअर में, सूरत ए 3 आयतों की भी हो सकती है ना, सूरह कौसर है तो वो ले आओ, सूरह का लफ्ज जो है ना जैसे मैंने आपको पहले बताया सूरह सुअर से है, एक शहर की फसील को भी कहते हैं, पहले जमाने के अंदर शहरों की फसीलें होती थी तो वो उसके अंदर शहर होता था, तो ये सूरह जो है इसलिए कहा जाता है कि कुरान के एक खास हिस्से को मुहित किया होता है, इसने उसका अहाता किया होता है, ये एक सूरत हो गई, इसने इन सारे मजामीन को, सूरतुल बकरा ने इन सारे मजामीन का अहाता किया हुआ है, इसके अंदर बंद है इस सूरत के अंदर। फिर सूरत का मतलब मर्तबा और शर्फ भी होता है, तो सूरह अपने पढ़ने वाले को मर्तबा भी देती है, शर्फ भी देती है जो इसको पढ़ेगा, तो एक सूरत ले आओ मगर इस जैसी होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी उठा के ले आओ तो अब वो कह रहे हैं कुरान है तो उससे वो कुरान बन गया, कोई भी किसी चीज को नाम कुरान रख देगा उससे, ये तो ऐसे ही हो गया कि मसलन है सूरज है तो मैं भी एक गोल सा कागज का टुकड़ा लूं और उसको येलो कलर करके कहूं ये भी सूरज है, अब कहां सूरज और कहां ये कागज का टुकड़ा, अब मेरे कहने से थोड़ी सूरज बन जाएगा, उस जैसा लेकर आए ना तो फिर बात बने, कहने से तो वो चीज नहीं बन जाती, अब उन्होंने कह दिया ये भी कुरान है, लेकिन क्या वो लैंग्वेज में वैसा है, क्या इसके अंदर जो फैक्ट्स हैं वो वैसा है, क्या जैसे कुरान जिंदगी बदल देता है वैसे है, क्या जैसे कुरान दिलों पे असर करता है वैसे है, क्या कुरान जैसे फ्यूचर की बातें और पास्ट की बातें परफेक्ट बताता है वैसे है, क्या कुरान जैसे गुमराहियों से निकालता है वैसे है, क्या कुरान जैसे जिंदगी के फितरों से हिफाजत करता है वैसे ही है जैसे सूरह कहफ करती है, आसमानी आफात से हिफाजत करता है मौज़तैन है, क्या वैसे वो करता है, नागहानी मसाइब से हिफाजत करता है कुरान, ठीक है, रात के शर और फितने और खतरात से हिफाजत करता है, हाजतें पूरी होती हैं, खैर और बरकत मिलती है, क्या वैसे है कुरान में, तो ये इतनी सारी चीजें हैं और भी बहुत सारी, मुसीबतों और गमों से निजात देता है, वैसी क्या है। फिर आखरत की जिंदगी का जो बताता है, फ्यूचर का जो कोई नहीं बता सकता, क्या वो उस ऐसी बातें वो बता सकते हैं जिसको वो कह रहे हैं ना कुरान है, बताएं वो उसके अंदर ऐसी बातें हैं, वही जैसे मुसलमा कज़ाब ने ऐसी ऐसी, ये ना समझे कभी किसी ने कोशिश ही नहीं की, लोगों ने वैसे ही गिव अप कर दिया, बहुत कोशिशें की लोगों ने, जैसे आज भी वो कहते हैं यहूदियों ने वेबसाइट बनाई और उसके ऊपर ऐसी ऐसी चीजें डाली हुई, तो उसको कुरान कहते हैं। तो बात ये कि लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोशिश का ये हाल था कि मुसैलमा कज़ाब, उसने नबूवत का झूठा दावा कर दिया और उसने कहा कि मेरे पास भी फरिश्ता आता है और मेरे पास वही लेकर आया, और फिर उसके लोगों ने कहा, जिन्होंने उसके ऊपर ईमान लेकर आए थे, उसके कबीले के लोग थे, उनने कहा तुम सुनाओ, उसने कहा अच्छा, एक जंगली चूहा, तेरा वजूद सिवाय दो कानों और सीनों के और कुछ भी नहीं, और ऐसे तो ऐसे। तो फखरिया जब उसने ये सुनाया तो उन्होंने कहा ये भाई किसी और को ना सुना देना, तो यानी ऐसा कलाम कि वो लोग भी, उन्होंने भी आगे से कह दिया कि ये क्या कलाम है, वो लोग थे अरबी, अब आज तो खैर वो वैसी जुबान के अंदर वैसी लोगों के अंदर नहीं रहा, लेकिन वो अरब में कुरैश वो लोग थे जो अपने आप को इतना बड़ा जुबानदान कहते थे कि वो कहते थे कि बाकी सारे अजमी हैं, गूंगे हैं, यानी हमें सबसे ज्यादा जुबान आती, एक एक शायर ऐसा ऐसा कलाम कहता था, और उनके सबा मुअल्लकात होते थे जो उनके, यानी उनकी पोइट्री होती थी उसको काबा में हैंग किया जाता था, लटकाया जाता था, जिसकी सबसे आला होती थी। तो हजरत अली ने जब सूरह कौसर नाजिल हुई तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने जाके इसको सूरह कौसर को वहां पे लटका दिया था लिख के, और जब लटकाया तो कोई एक शायर गुजरा और उसने, जब ये जाहिलियत का शायर था वो, कोई मुसलमान नहीं था भाई, बात तो वही होती है ना कि हम जितना भी कहते रहें कि ये कुरान सबसे ज्यादा ऐसे ऐसे है, असल बात ये है कि गैर मुस्लिम माने, तो वो जाहिल था और उसने कहा मा हादा कौल अल बशर, ये इंसान का कौल नहीं है, ये इंसान की बात नहीं है, और जो सबसे बड़ा उनका शायर था उसने गिव अप कर दिया कुरान के आगे, उसने कहा कि मैं अब कोई कलाम नहीं कह सकता इसके आगे, जिनके इतने बड़े कलाम होते थे कि वो काबे में लटकाए जाते थे। तो ये चैलेंज रहती दुनिया तक है, उस वक्त भी था और उस वक्त भी लोगों ने कोशिश की लेकिन गिव अप कर दिया, और आज तक है। यही बात जब गैर मुस्लिम कहें कि आप कैसे कह सकते हैं ये अल्लाह ताला का कलाम है, तो ठीक है, अगर इंसान का कलाम है तो फिर इंसान, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, फिर तुम तो बहुत अपने आप को पढ़े लिखे समझते हो, जाओ फिर जाके तुम भी ऐसा बना के ले आओ, लेकिन देखो होना कुरान चाहिए इसके मुकाबले का, मिथली ही इस जैसा हो, ये नहीं कि तुम खुद ही कह दो कि ये कुरान है। फइल्लम तफालू, फिर अगर तुम ये ना कर सको, अगर तुम ये काम ना कर सको और तुम नहीं कर सकोगे, वलन तफालू, और अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम कभी कर भी नहीं सकते, ये याद रखो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि कहाँ खालिक का कलाम और कहाँ मखलूक का कलाम, मखलूक तो सारी भी मिल जाए, खालिक के कलाम का कैसे मुकाबला कर सकती, इस इल्म का, इस हिकमत का ये कैसे मुकाबला हो सकता। अल्लाह अकबर, फत्तकुन्नार, तो फिर डरो, बचो उस आग से, यानी जैसे किसी को कहा जाता है ना कि अगर तुम नहीं मानते तो फिर ठीक है, फिर सजा से बचो, किसी को कहा कि तू चोरी ना कर, वो फिर भी नहीं मान रहा, कहते हैं मान जाओ वरना फिर डरो कैद खाने से, फिर वैसी सजा है कि फिर जेल जाना पड़े, तो फिर अगर नहीं मानते ना तुम नहीं कर सकोगे, हरगिज नहीं कर सकोगे, और फिर भी तुम नहीं मानते इस कलाम को, तो डरो या बचो उस आग से, अल्लती वकूदुहन नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, वो ऐसी आग है जिसका फ्यूल ही क्या है, यानी कोई सोचता है अगर कि वो आग जैसे दुनिया की आग होती कुछ अरसा बाद तो वो बुझना शुरू हो जाती है। नहीं, उस आग का ईंधन ही इंसान और पत्थर है, और इंसान और पत्थर उसके अंदर जिंदा ही है, आई मीन इंसान जिंदा है उसके अंदर। तो जब जब फ्यूल उसके अंदर पड़ा हुआ है तो वो भड़कती ही रहेगी, वो कभी बुझेगी नहीं और कभी कम नहीं होगी, ये कुरान कहता है। उसकी हिद्दत बढ़ती जाएगी और उसके अंदर पत्थर होंगे। पत्थर क्यों होंगे? एक तो ये कि पत्थर उसका उसको और ज्यादा भड़काने में मदद देंगे। कहा जाता है वो पत्थर दुनिया के पत्थरों की तरह नहीं होंगे, वो और ही पत्थर हैं जो के उसके होंगे। ये ना मानने वालों का अंजाम के जो कुरान का इनकार करें, जो कहे मैं कुरान को नहीं मानता, ये अल्लाह की तरफ से नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला महफूज रखे, अल्लाह ताला ईमानों की सलामती दे हम सबको। ऐसे भी लोग देखे हैं जो के यानी मुसलमान घरानों में बॉर्न हो गए, उनके नाम भी मुसलमान ही हैं, लेकिन बड़े होके वो कहने लगे ये हम नहीं मानते कुरान ऐसे ही है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अस्तग़फिरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, कि उन्होंने कहानियां इधर उधर से लिख के इसके अंदर लिख दी हैं, ये अपने कानों से सुनी हुई बातें हैं मेरी, लिख दी हैं और फिर उसको कह दिया ये कुरान है। तो कुरान ने तो शुरू में ही चैलेंज दे दिया, तो फिर ठीक है फिर तुम भी ले आओ ऐसे कोई, और फिर अगर तुम नहीं ला सकते ना तो फिर डरो फिर उस आग से, फिर अपना कोई इंतजाम कर लो उस आग से बचने के लिए। उस आग का तो ईंधन ही इंसान और पत्थर है। तो ये वो पत्थर हैं जो शायद सल्फर के हैं या किसके हैं, कि जो इतनी शदीद आग के अंदर भी वो पत्थर रहेगा, वरना पत्थर भी पिघल जाता है। और दूसरा इसका मानना ये है कि वो ये वो पत्थर हैं जिनसे लोग बुत को तराशते थे, बुतों को बनाते थे अपने, और वो बुत भी जहन्नुम में डाले जाएंगे। क्यों? उनका ऐसे नहीं कि उनका कोई कसूर है, इसलिए इसलिए ताकि ये जो लोग उनको पूजते थे, इनकी हसरत और इनके अफसोस का आप अंदाजा करें कि कितना होगा कि वो जिनको हम पूजते थे वो भी हमारे साथ ये पड़े हुए, जिनको हम समझते थे ये मालिक हैं, ये हमारे चीजें देते हैं, ये हमें हमारी सिफारिशें करेंगे, ये हमारे लिए वहां काम आएंगे, वो ये गिरे पड़े, तब उनके अफसोस का क्या मकाम होगा। इसके लिए उनको भी अंदर डाला जाए। वाहिदत लिल काफिरीन तैयार कर दी गई है, ये मोनस वो सॉरी मुआजी है, तैयार हो चुकी है लिल काफिरीन, काफरों के लिए। ये जहन्नुम अभी, अच्छा दो तरह के लोग हैं, एक ने तो मुझे कहा कि आप बताएं जन्नत और जहन्नुम अभी तो पैदा ही नहीं हुई, अल्लाह ताला ने उस दिन उसको पैदा करना, कयामत के दिन, अभी कैसे कह सकते हैं पैदा हुई? ये देखें कुरान में, अगर कुरान को समझा होता तो ये माजी का सीगा है कि तैयार की जा चुकी है, ये नहीं कि अभी होनी है। और बहुत सारी हदीस से हमें पता चलता है कि जहन्नुम मौजूद है, जब अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया था तो वो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको दहकाओ, तो उन्होंने 1,000 साल तक उसको दहकाया, एक दिन दो दिन नहीं, इतना उसको दहकाया, जैसे और ये दहकाने का मतलब समझते हैं ना कि उसको और ज्यादा गर्म किया, तो वो 1,000 ईयर्स तक वो उसको गर्म करते रहे, तो तब वो रेड हो गई बिल्कुल सुर्ख, उसके बाद 1,000 ईयर तक और उसको दहकाने का हुक्म दिया, तो और 1,000 ईयर वो दहकाते रहे तो वो सफेद हो गई बिल्कुल। फिर अल्लाह ताला का हुक्म आया 1,000 ईयर्स तक उसको दहकाते रहे तो वो अब काली हो गई है, स्याह तारीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये खबर दी है कि जहन्नुम ऐसे ही है, तो वो तैयार हो चुकी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे तो देखा भी था, तो जन्नत भी बन चुकी है और जहन्नुम भी बनी हुई। दूसरे कुछ लोग कहते हैं जहन्नुम वहन्नुम कुछ नहीं है, ये सिर्फ ख्यालात हैं, ये तो सिर्फ डराने के लिए बताया गया है, वरना वैसे जहन्नुम कोई चीज थोड़ा ही है। तो आयत तैयार की जा चुकी है इनकार करने वालों के लिए, जो नहीं मानते, जो इस वही को नहीं मान रहे। इसका मतलब है कुरान पे ईमान लाना कितना जरूरी है, और इसके ऊपर ईमान लाए बगैर कोई जहन्नुम से बच नहीं सकता, क्योंकि यहां से ये पता चल रहा है। काफिर किसको कहा जा रहा है यहाँ पे? उसको नहीं कि जो अल्लाह ताला का इनकार करे, यहाँ पे काफिर वो है जो इस कुरान का इनकार करते, जो इस वही इलाही का इनकार करते, जो इसको समझे कि ये अपने तरफ से लेकर आ गए हैं या ये पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से है भी कि नहीं है, जो इसके अंदर शक करना शुरू करते। अल्लाह हू अकबर। वबशिर अल्लदीना आमनू व आमिलु सालिहात, और बशारत दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने सवाल अमल किए। ईमान लाए अल्लाह पर, और ईमानियात आपको पता है 6 हैं, अल्लाह पर, रसूलों पर, किताबों पर, फरिश्तों पर, तो योम कयामत पर, क्यामत के दिन पर, और कदर पर। तो ईमान लेकर आए और उन्होंने सवाल अमल किए, नेक अमल किए, उनको बशारत दे दीजिए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से खुशखबरी उनको दिलाई गई है जो ईमान ला के साले अमल करते हैं, और नेक अमल की जो शरायत है, आसन अमल भी आमिलु सालेहात ही है, जिसको सूरतुल मुल्क में कहा गया कि जिंदगी और मौत को अल्लाह ताला ने तख्लीक ही किस लिए किया कि देखे कि तुम में से कौन है जो आसन अमल करता है। आसन अमल ही आमिलु सालेहात है। आमिलु सालेहात कौन है, कौन से अमल है? वो नहीं है कि जिनको मैं या आप या जमाना कहना शुरू कर दे, लोग कहना शुरू कर दें ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो जी आमिलु सालेहात हो गया। नहीं, आमिलु सालेहात के लिए 2 शराइत हैं। एक, नंबर 1 शर्त कि वो इखलास से किया गया, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो, तब वो अमले साले होगा। दूसरी शर्त, दोनों शर्तें होनी चाहिए। दूसरी शर्त, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, तब वो नेक अमल बन जाता है। तब हर अमल को आप नेकी का अमल बना सकते हैं अगर आप उसके अंदर नीयत सिर्फ अल्लाह की रजा रखें, चाहे वो आप दावत कर रहे हैं लोगों की घर पे बुला के, चाहे आप किसी को राइड दे रहे हैं कहीं जाने के लिए, चाहे आप जॉब पे जा रहे हैं, चाहे आप कोई घर के काम काज कर रहे हैं, वो भी आपकी नेकियां बन सकती हैं अगर वो सिर्फ खालिस अल्लाह की रजा के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, और आपकी जो भी इबादत है, अब कई चीजें हैं उनको लोग कहते हैं ये बड़ी नेकी का काम है, हालांकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया उनको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके सहाबा ने भी नहीं किया होता, और आपके सहाबा का जमाना यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए थे 11 हिजरी में, ठीक है, उसके बाद 110 हिजरी में आखिरी सहाबी दुनिया से चले गए, तो 100 साल तक सहाबा ने भी नहीं कभी उस काम को किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी नहीं हुआ, सहाबा कराम की भी जिंदगी में नहीं हुआ, आखिरी सहाबी भी दुनिया से चले गए, उसके बाद किसी ने वो काम शुरू कर दिया। अब आप उसको कहते हैं ये नेकी का काम है, नेकी का काम कैसे हो गया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं किया और सहाबा ने भी नहीं किया, उसकी कहीं भी कोई दलील नहीं मिलती। वो आपका शौक हो सकता है, वो आपका रिवाज हो सकता है, वो आपकी खानदानी रिवायात हो सकती हैं, लेकिन उसको दीन ना कहें, उसको आमिले सालेहात ना कहें, वो बिदत जरूर हो सकता है, मगर ये नहीं हो सकता कि आप उसको दीन बना लें, आप उसको नेकी का काम बना लें। तो जो लोग ईमान ला के साले अमल करते हैं, और साले अमल में जो पहली शर्त मैंने आपको बताई, खालिस अल्लाह के लिए हो, अगर वो लोगों को दिखाने के लिए हो, अगर वो अपने रिवाज पूरे करने के लिए हो, अगर वो क्या करें फिर लोग क्या कहेंगे तो इसलिए हो, क्योंकि अब क्या करें फिर लोगों की बातें सुनने से बचने के लिए हो, तो वो फिर आमिलु सालेहात तो ना हुआ। तो सिर्फ सिर्फ इसलिए हो कि अल्लाह ताला तू मुझे इसका सवाब दे, तू मुझसे खुश हो जाए। तो अन्ना लहुम जन्नात, उनके लिए हैं जन्नतें। अब ये भी आप देखें, आमिलु सालेहात में अगर हम ये नियत रखते हैं कि अल्लाह हमें जन्नत मिल जाए, हम सवाब के लिए ही कर रहे हैं काम, तो क्या ये ठीक है? या फिर ये कहना चाहिए जन्नतों के लिए काम ना करो, ये तो फिर लालच हो गया, तो लालच के लिए थोड़ी काम करना चाहिए, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में काम करो। बताइए आप इसका जवाब, क्योंकि ये भी सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इबादत या नेक अमल हमें किस नीयत से करना चाहिए। तो बिल्कुल जन्नत के शौक में, जन्नत का ये लालच तो अल्लाह ताला ने खुद दिलाया है, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है इंसान को। अगर आप जहन्नुम से बचने के लिए कोई काम छोड़ते हैं, या जन्नत के लिए, हसूल के लिए आप लालच रखते हैं कि अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दे, इसकी तो दुआएं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी और दुआओं में मांगा कि अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाए, जहन्नुम से बचने की दुआएं की, लोगों को शौक दिलाया जन्नत के लिए, तो फिर जब ये कोई कहे कि नहीं जन्नत के शौक में नहीं करना चाहिए और जहन्नुम से बचने के लिए नहीं करना चाहिए, बस वैसे ही आप करें, ये गलत है, ये हमारे दीन की तालीम के खिलाफ है। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में ये शौक दिखाया, सारी अऊ इला मगफिरत मिन रब्बिकुम जन्नत, और वह साबिकू भी कह के सब कतले जाओ, तेजी करो जन्नत की तरफ, जन्नत के हसूल की तरगीब दिलाई, इसके लिए बताया कि आप इसके शौक रखें, इसको इसकी चाहत रखें और जहन्नुम से बचने का खौफ रखें, और इसके लिए आप अमल करें कि जहन्नुम से बच जाएं और जन्नत में दाखिल हो जाएं, तो इसमें कोई हरज नहीं है, और ये बल्कि अच्छी बात है ना कि हम ये कहने लगे, क्योंकि कई सूफिया कहते हैं नहीं बस वो जन्नत जहन्नुम का नहीं आपने रखना, इनको भूल के आप फिर वैसे ही अमल करो, तब आपका अमल खालिस और ज्यादा अच्छा होगा, नहीं। ठीक, हमने जैसे आमिलु सालेहात मैंने आपको बताया, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह ही तरगीब दिलाया करते थे सहाबा को, तो जन्नत है उनके लिए तजरी मिन तहती अल अनहार, इसके नीचे नहरें बह रही, कैसी जन्नत होंगी, जन्नत है जन्नात है यानी बागात हैं ऐसे, और ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, ये नहरें जो हैं ना तो किसी गड़े में बह रही हैं, ना कोई नीचे कोई चीज़ है कि जिसके अंदर ये जन्नत की नहरें बहने वाली हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बताया कि जन्नत की नहरें बगैर खाइयों और गढ़ों के बहती हैं, ऊपर ऊपर बह रही होंगी, वल्लाहु आलम कैसी होंगी, तो दुनिया में तो हम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते और किसी चीज़ का भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की जो भी चीज़ है वो हमारी सोच से भी बियॉन्ड है, जिसको ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, और ना किसी दिल पे उसका ख्याल गुजरा, तो हम इमेजिन भी फिर कैसे कर सकते। लेकिन ये पता चलता है कि ऊंची कोई जगह होंगी जहां पे उनके महल्लात होंगे और नीचे नहरें बह रही होंगी, और फिर कुल्लमा रुजिकु मिनहा मिन थमरातिन रिज़्कन, जब कभी भी उनको रिस्क दिया जाएगा, कोई भी फल बतौर रिस्क के खाने के लिए कोई भी फल दिए जाएंगे, कालू वो कहेंगे, जन्नती कहेंगे, हाजल रुजिकना मिन कबल, ये तो हमने हमें पहले भी हम दिए गए, पहले से मतलब क्या है, दुनिया में भी यानी हमने खाए। देखें आप ये सोचें कि हमें किस चीज का शौक होता है जो हमारे यानी हमारे रिवाज में या हमारे घरों में खाई जाती चीज रही हो, वो ही हमें खाने का भी शौक होता है। अब मसलन कोई अफ्रीकन है, वो अपनी कोई बेस्ट डिश हमारे सामने ले आए जो हमने ना कभी खाई है ना कभी देखी, अब वो इसकी तारीफें कर रहा है कि बड़ी अच्छी है और बड़ा जबरदस्त जायका, लेकिन चूंकि हम उसे मानूस नहीं होते तो हमें उसकी तरफ कोई अट्रैक्शन भी नहीं होती, जबकि जो हमारी अपनी डिशेज हैं उनका नाम भी लिया जाए तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है, तो वो क्या बात है, क्योंकि हम उससे फेमिलियर हैं, तो हमें उसका शौक भी है, हमें उसका टेस्ट पता होता है, हम उसकी तरफ रغبत रखते हैं जो हमने कभी खाई हूँ अपने घरों में, लेकिन जो कभी नहीं खाई ना कभी देखी, अब बिल्कुल ही नई चीज अगर आ जाए हमारे सामने तो हमें उसका शौक नहीं होगा, इसीलिए जन्नत में वो फल और मेवे दिए जाएंगे जो जाहरी शक्लो सूरत में तो मुशाबे होंगे दुनिया के फलों से, दुनिया के खानों से, लेकिन उनका टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, तो इसलिए वो जाके कहेंगे कि ये ऐसे तो हमें पहले भी दिए गए थे, दुनिया मिन कबल से मतलब पहले भी दिए गए थे, उतू व उतू भी ही मुतशाबिया, हालांकि इसलिए यहाँ पे देखें हालांकि का माना करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, हालांकि वो दिए जाएंगे उससे मिलते जुलते, ये सिर्फ शक्ल में मिलते जुलते होंगे वैसे नहीं होंगे, तो ये फल नफासत में, सुथराई में, जायके में, रंग में, मिठास में बिल्कुल दुनिया के फलों से अलग होंगे, वैसे देखने में लग रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपको जब कुरान में कहा जाता है कि वहां पे अंगूर हैं अनार हैं, तो अंगूर अनार की शक्ल वैसी तो होगी लेकिन वो टेस्ट नहीं, और फिर दुनिया में तो देखें कोई फल पका हुआ होता है, कोई बिल्कुल ही कच्चा निकलता है, कोई मीठा निकलता है, कोई बिल्कुल ही फीका होता है अंदर से, तो वो ऐसे नहीं होंगे, बल्कि वो सारे आला क्वालिटी के होंगे और सारे ही मिलते जुलते होंगे, इनको देख के इंसान पहचान लेगा, यानी वहां पे अब जैसे यहाँ पे दुनिया में खाने पीने का जी चाहता है, घरों का जी चाहता है, मेरे पास ऐसा घर हो, कोई कहता है उसके पास नहर बह रही हो या लेक हो, या ऐसा पेंट हाउस चाहता है, बाला खाने चाहता है, बिल्डिंग से समंदर नजर आ रहा हो। आपको पता है दुनिया में भी ये जगहें ज्यादा महंगी होती हैं जहाँ से पानी का व्यू हो। आप बीच साइड पे चले जाएं तो वहां पे जो उन्होंने अपार्टमेंट्स बनाए होते हैं जो ऊपर होते हैं उसकी ज्यादा कीमत होती है। तो जन्नत में ऐसे बाला खाने भी हैं, ऐसी जगहें भी हैं, ऐसी चीजें, ऐसी रहाइश गाहें हैं जहां से दूर दूर तक भी नजर आएगा। बल्कि एक हदीस में आता है कि सबसे कम दर्जे का जन्नती वो होगा कि उसके जो महल्लात होंगे, बीवियां होंगी, नौकर चाकर होंगे, तख्त वगैरह होगा, इस कसरत से होंगे, इतने ज्यादा होंगे कि 1000 बरस की मुसाफत से भी वो उनको देखेगा। इतने महल्लात, इतने नौकर चाकर और इतनी लग्जरीज होंगी 1000 साल की। यहाँ पे दुनिया में आप शायद वो कहते हैं कि इंसान 1-1.5 किलोमीटर तक सिर्फ देख सकता है, तो मील तक देख सकता है। तो ये सोचे 1000 बरस की मसाफत कितनी होगी। और सबसे ज्यादा नेमत वाला जन्नत में वो होगा जो अल्लाह ताला का दीदार सुबह शाम करेगा, सुभान अल्लाह। और वला हुम फीहा, और उनके लिए, और यहाँ पे इसको नहीं कहना वला हुम फीहा, अगर आपने कह दिया ना वला हुम फीहा, ला को लंबा कर दे तो नहीं होंगे उनके लिए। अब आप तर्जुमा पढ़ रहे हैं तो इन चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि अब आप सीखने वालों में हैं कि अब ये देखें, ला कर दिया तो नहीं हो गया और ला कर दिया तो लिए हो गया। उनके लिए है फीहा, इसमें, किसमें, इस जन्नत में, अजवाज मुतहरतुन, अजवाज बीवियां, स्पाउसेस जो कि मुतहरा होंगे, पाकीजा होंगे, यानी इतनी पाक साफ बीवी होंगी कि मैल कुचैल से भी पाक होंगी, बुढ़ापे से पाक होंगी, पीरियड्स वगैरह, निफास, थूक और दांतों की बदबू और बुढ़ापे के जो आसार होते हैं उनसे, और किसी किस्म की भी जो जिस्मानी तौर पे इंसान की फ्लॉज हैं उनसे पाक, और अंदर से भी पाक, यानी अंदर भी उनका, उनका दिल भी पाक साफ, उनका किरदार भी पाक साफ, उनका अखलाक भी बेहतरीन। और जैसे हदीस में आता है ना, एक औरत 70 हुल्ले पहनेगी, यानी 70 ड्रेसेस पहने होंगे, और इतनी नफासत होगी उसके जिस्म में, और ऐसे खूबसूरत लिबास वो होंगे कि उन 70 के अंदर से उसकी हड्डी का गूदा नजर आ रहा होगा। अगर जन्नत की एक औरत जमीन की तरफ झांक ले तो उसकी ब्यूटी इतनी है, इतनी खूबसूरत वो होगी कि उसकी चमक से सारी जमीन से आसमान तक की जगह जो है उसकी ब्यूटी की वजह से चमकदार हो जाएगी और सेंटेड हो जाएगी, खुशबू फैल जाएगी। इट्स ऐसी, सुभान अल्लाह, वो क्या खूबसूरती होगी और वो क्या खुशबू होगी। और जन्नत की औरत के सर का जो दुपट्टा है ये दुनिया और उसकी सारी नेमतों से बेहतर है, इतना एक्सपेंसिव है, इतना प्रेशियस है। क्या कीमत पूरी दुनिया की आप लगा दें और जितनी चीजें दुनिया में हैं उनकी लगा दें, जो दुनिया में इस एक दुपट्टा उसका सिर्फ उससे ज्यादा कीमती है। तो बाकी चीजें क्या फिर उनकी जो और नेमतें होंगी उसका क्या आप हिसाब किताब रख सकते हैं। अल्लाह अकबर। इसीलिए जन्नत के अंदर बाथरूम नहीं है ना, क्योंकि ना पेशाब है, ना पखाना है, ना कोई हैज है, ना कोई शावर लेना है, साफ सुथरे रहेंगे, ना कोई नाक है, ना कोई थूक है, ना कोई बलगम है, कुछ भी नहीं है। मुतहरा, पाकीजा, वाहुम फीहा खालिदून। जब इंसान ये सोचता है ना इतनी खूबसूरत जगह, तो सबसे पहले जो चीज हमें बहुत महबूब हो, सबसे पहले हमें जब वो मिल जाए तो ख्याल क्या आता है, हाय छीन ना जाए कहीं, हर वक्त धड़का लगा रहता है कि हाय मुझसे कोई ले ना ले ये। तो कोई फिक्र ना करो, उसमें हमेशा ही रहना, कभी फना ना नेमते होंगी, ना इंसान फना होगा, ना मौत है वहां पे और ना ही बुढ़ापा है, ना ही बीमारी है। अल्लाह हू अकबर। अल्लाह ताला ऐसी जन्नत हम सबको नसीब फरमाए और हमारे तमाम प्यारों को नसीब फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहद अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
يا أيها الناس فَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون